आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
हिंदी साहित्य में कई विचारधाराएं देखने को मिलती हैं और यथार्थवाद, सौंदर्य, सामाजिक चेतना और नवीन प्रयोगों के माध्यम से कविता और साहित्य को एक नई पहचान मिली है। आधुनिक काल में हिंदी कविता में छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता के नाम मिले। अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हम छायावादी युग के चार स्तंभों में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा पर चर्चा कर चुके हैं और आज उसी श्रृंखला में बात चौथे स्तंभ यानी कवि, उपन्यासकार और निबंधकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के। निराला जो अपने नाम के ही अनुरूप अपनी रचना के हर क्षेत्र में निराले थे। निराला जी के जन्म से संबंधित समय अलग अलग मिलते हैं, जैसे कहीं पर है वर्ष 1899, कहीं 1898 तो कहीं 1896 भी मिलता है। इसी तरह तारीख भी कहीं फरवरी महीने की 27, 21 तो कहीं 23 है। ये भी माना जाता है कि प्रसिद्ध वरदे वीणा वादिनी इस कविता के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म बसंत पंचमी के दिन हुआ था और संदर्भ ये भी मिलता है कि 1930 से बसंत पंचमी के दिन इनका जन्मदिन मनाने की परंपरा शुरू हो गई। गंगा प्रसाद पांडे जी ने उन्हें महाप्राण निराला कहा, जो उनका उपनाम बना। 1923 में निराला ने मतवाला नाम की पत्रिका का संपादन शुरू किया और ये हिंदी की पहली व्यंगात्मक पत्रिका थी। निराला को छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का पथ प्रदर्शक कवि भी कहा जाता है। 8 खंडों में प्रकाशित निराला रचनावली में विषय की विविधता और नवीन प्रयोगों की बहुलता है, जिसमें प्रकृति प्रेम, मानवीय संवेदनाओं के साथ साथ शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति और रूढ़िवादी परंपराओं के खिलाफ विद्रोह, आध्यात्म और दर्शन दिखता है। अपनी कविताओं में सूर्यकांत त्रिपाठी ने मुक्त छंद का आविष्कार किया था। जाने माने साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में संगीत को काव्य और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का प्रयास सबसे अधिक निराला ने ही किया है। तो आज बात की है भारत के जाने माने लेखक कवि वेद प्रकाश वैथित जी के साथ, जो आजकल ऑस्ट्रेलिया आए हुए हैं, और उनसे जानना चाहा निराला की रचना शैली का केंद्र बिंदु क्या था। तो वो कहते हैं,
जहाँ तक महाप्राण निराला का विषय है, निराला जी अपने आप में एक ऐसे कवि हुए जैसे भक्ति युग में कबीर के बाद कोई दूसरा कवि कबीर नहीं पैदा हुआ। इसी तरह निराला जैसा व्यक्तित्व हिंदी साहित्य में दोबारा नहीं हुआ। उन्होंने जीवन के जो संघर्ष किए, वो संघर्ष हरेक कोई व्यक्ति नहीं सहन कर सकता। उनके जीवन का मूल मंत्र था अमृत मंत्र नव, ये उनकी एक पंक्तियां हैं। तो अमृत शब्द के पीछे मृत भी तो शब्द है, तो जो मरमर के बार बार जिया है, उनके जीवन की विचारधारा थी कि मतलब मैं बार बार, मैंने जीवन में इस रन को जिया है और मैं बार बार मृत्यु को प्राप्त किए तो भी मैं जीवित रहा हूं। उनको समझने के लिए उनका व्यक्तित्व समझना बड़ा जरूरी है। उनके जीवन में दुख है, संतरास है, पीड़ा है, व्यथा है, और इसी जिजीविषा के साथ उनमें करुणा है, दया है, सहानुभूति है। उनके प्रति सहानुभूति है जो असहाय हैं, जो निर्बल हैं, जो जिनके पास शक्ति नहीं है। तो निराला जी का हृदय उनके लिए तड़पता है। तो उनके इस लेखन में राग है, विराग है, शोक है, अशोक है, प्रेम है, सौंदर्य है, दार्शनिक चिंतन के साथ साथ ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा और समर्पण भी है। ये उनके लेखन का मूल मंत्र है और इसी पृष्ठभूमि में उनके लेखन को हमें समझना चाहिए।
तो क्या हम इस संदर्भ में कह सकते हैं कि जो उनकी आप बीती थी
जी,
उसके माध्यम से उन्होंने काव्य को या गद्य को एक नवीन दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई?
जी, यहाँ पर दो बातें हैं, एक तो लेखन शैली
जी,
दूसरी उसकी विचारधारा लेखन हाँ, की तो उनका अधिकांश जीवन बंगाल में बीता
जी।
उन्होंने एक नए छंद की रचना की जिसको निराला छंद के लोग कहने लगे, या छंद मुक्त रचना जो बंगाल के पृष्ठभूमि से आई, परंतु उसके विषय में कुछ एक तकनीकी बात और मैं विशेष रूप से कह रहा हूँ। एक तो होती छंद मुक्त कविता
जी,
और एक होता है मुक्त छंद।
हाँ,
उनकी कविता में मुक्त छंद है, एक रिदम है, एक लय है जो आखिर तक बनी रहती है, और ये पता ही नहीं लगता कि छंद मुक्त आप छंद में गा रहे हैं इसको या बिना छंद के कह रहे हैं, और इसीलिए उनको महाप्राण कहा गया
जी, क्योंकि
वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता सलधा लकुटिया टेक मुठ्ठी वरधाने को भूख मिटाने को मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता वह आता। मतलब देखिए भिक्षु का कितना सुंदर चित्र उन्होंने इस तरह से एक ही लय में मतलब बांध दिया है, और उसमें कहीं ये नहीं लगता कि लयात्मकता टूट रही है।
हाँ, और क्योंकि ये एक लीक से हटकर उनकी कविता करने का एक ढंग था, नहीं तो ये होती थी कि जो कविता की जो पहली लाइन है वो दूसरी के साथ में मिल जाए, मात्राएं
गिनते थे वो, फिर एक पर्टिकुलर ढांचे में उनको कविता को बांध के, ये उनकी हिंदी साहित्य को एक महान देन थी।
महान देन,
जैसे मैं एक उदाहरण
बताता हूं, परिवर्तनकारी कहा जा सकता है काव्य के क्षेत्र में।
हाँ, मैं बताता हूँ, जूही की कली उनकी कविता है, सौंदर्यपूर्ण कविता है
जी,
बिल्कुल उसका अद्भुत सौंदर्य है उसमें, और पता है वो कहाँ लिखी गई? वो शमशान में लिखी गई।
अरे
हाँ, इलाहाबाद के प्रयागराज के शमशान में, और इतना सौंदर्य है बोध उनका, ये देखिए मतलब आश्चर्य का विषय। और इसी कविता का एक और पहलू बता रहा हूँ मजूही की कली का, कि जब वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के पास ले गए इसको कि ये कविता उनकी पत्रिका में छपे, तो उन्होंने इस कविता को फाड़ के फेंक दिया था कि कोई कविता नहीं है, क्योंकि जब तक छंद मुक्त कविता चल रही थी और महावीर प्रसाद द्विवेदी युग जो साहित्य के लिए बहुत प्रसिद्ध है, उन्होंने अपने हिसाब से साहित्य को लिखवाया और अपने हिसाब से साहित्य को छापा, परंतु आज वो ही कविता हम उसके सौंदर्य के लिए हम याद करते हैं।
बिल्कुल है? तो एक तरह से उनके जो व्यक्तित्व का था या उनकी जो काव्य रचना है या गद्य रचना है उसमें उनके कई भाव दिखते हैं
जी।
उसमें सौंदर्य भी है
जी,
औज भी है
जी, जी
कहीं कहीं पे विद्रोह भी दिखता है
जी। महाप्राण नराला ने जहाँ देशज एक मतलब बिल्कुल अंतिम छोर के व्यक्ति पे रचना कही, वहाँ राष्ट्र पुरुषों पर भी रचनाएं उन्होंने कही है। भगवान श्री राम पर जो उनकी राम की शक्ति पूजा रचना
जी,
है
जी,
उसका काव्य सौंदर्य अप्रतिम है, मतलब इतना अनोखा है और इतने बढ़िया सुंदर शब्द उन्होंने लाए हैं, और उसके साथ साथ ये नहीं भगवान की तरह नहीं उनको मतलब एक मनुष्य के स्तर पर लाके भगवान राम को, कि जब उनकी आंख से आंसू टपकता है
हाँ,
तो बड़ा भावुक क्षण होता है, और वो राम को कहते हैं कि तुम शक्ति की आराधना करो, तुम सिंह हो, सिंह पुरुष हो, मतलब उस समय शक्ति का आह्वान देश की रक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। इसके साथ साथ केवल राम भगवान श्री राम की नहीं, संत सिपाही गुरु गोविंद सिंह जी पर उनका बहुत बड़ा काव्य है, बहुत सुंदर कविताएं उन्होंने लिखी हैं। इसी तरह छत्रपति शिवाजी को, जो राष्ट्रनायक थे, जो देश के लिए मरे मिटे, जो देश के लिए मतलब जिन्होंने सर्वस्व अर्पण किया, ऐसे राष्ट्रनायकों पर उन्होंने जो कविता लिखी हैं, तो उनको एक राष्ट्रवादी कवि, एक महाकवि तो हैं, एक राष्ट्रवादी कवि के रूप में भी हमें जानना चाहिए, क्योंकि इस तरह के राष्ट्रवादी नायकों की रचनाएं एक ऐसा कालखंड आया जिसमें देखने को नहीं मिल रही थी, पाठ्यक्रम से अलग हो गई थी, तो उन सब पे भी उन्होंने अपने सहर्ष हृदय से और भावुक होकर वो रचनाएं लिखी, और मतलब उन्होंने राम की शक्ति पूजा में दो शब्द बड़े सुंदर प्रयोग किए
जी,
और वो बड़े बहुआयामी हैं, शुद्ध और अशुद्ध। देखिए उन्होंने लिखा है, रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चित होकर शुद्ध करो तुम उसे ध्वस्त, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छेड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन।
क्या बात है,
तो ये मौलिक कल्पना जो शक्ति की मौलिक कल्पना है,
ये बिल्कुल
ये एक विशेष मैं इस पे विशेष जोर देना चाहता हूँ कि शक्ति की मौलिक कल्पना, परंपरागत नहीं कि जैसे भाई उस समय जिस तरह की शक्ति का प्रयोग होता था नहीं, या शक्ति पूजा हमारे देश में होती है, तो मौलिक कल्पना जिस समय जैसी शक्ति की आवश्यकता है
उन्होंने उसी का प्रयोग कर
उसका प्रयोग करिए राम, आप उठिए हे सिंह पुरुष, मतलब सिंह पुरुष होकर इस शक्ति की आराधना करो, इस तरह के उनके शब्द इसमें हैं।
जी वो तो जी, एक अलग ही उसका मुकाम है राम जी, की जी, शक्ति पूजा का
जी।
और अच्छा उनकी कहानियां भी जो थी सामान्य जनरुचि की कहानी कह सकते हैं, अप्सरा थी, अलका, प्रभावती,
जी जी,
ये सब एक कुल धरातल से जुड़ी हुई कहानियां हैं।
इसका कारण ये था जी कि वो जनसाधारण का अति निकट थे। सरोज स्मृति जब उन्होंने लिखा, सरोज स्मृति मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ पूरा, मैं भावुक हो जाता हूँ। मतलब देखिए उनके जीवन के कितने कठिन कठिन दौर गुजरे। अब उसमें कहा अंत में कि क्या कहूं आज जो नहीं कही दुखी जीवन की कथा रही। अच्छा ऐसा नहीं, उनके साथ में कोई भी दुखी दिख गया तो उनका अपना दुख हो गया वो
जी। और इस संबंध में कई हम लोग उनके बारे में पढ़ते हैं जिनके संस्मरण होते हैं।
जी जी, एक बात और विशेष है, देखिए दुख उनके जीवन में था परंतु उनको उन्होंने दुख को कैसे लिया। उनके शब्द हैं, गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को, बुझ गई है लौ प्रथा की जल उठी फिर सींचने को। मतलब वेदना को रोकने के लिए उन्होंने गीत गाया है, साहित्य की रचना की है। उस वेदना को इतना झेला है कि उससे वो हमें अमृत प्राप्त
हुआ, अपना लिया ना उसी में, लिया। उस विष में उन्होंने अमृत ढूंढ लिया।
हाँ, और फिर ईश्वर के प्रति, कई लोग उनका ये कहते ईश्वर के प्रति बड़ी आस्था थी। उन्होंने कहा अच्छा आंख बचाते हो ईश्वर से, बड़ा उपालम्ब दिया कि तुम्हारी वो तुम्हारा जो प्रतिज्ञा थी कहाँ गई, मुझे मतलब मेरे लिए क्यों नहीं आ रहे हो। और जीवन में कभी उन्होंने कोई संग्रह नहीं किया, अपनी संतान के लिए कुछ नहीं संग्रह किया, जो सामने आया वो उनका अपना हो गया, उसके लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया उन्होंने, जो उसके पास था उसे दे दिया, ओगड़दानी बिल्कुल। एक स्वाभिमानी कवि था वो, जीवन को जिया, कविता को जिया, साहित्य को जिया, यही उनकी विशेषता थी।
और साहित्य को एक अनमोल धरोहर, अनमोल धरोहर देकर, और एक स्तंभ थे वो छायावाद के, और उसी मुकाम के साथ में वो चले भी गए। यही बात होती है साहित्य की कि उसके अंदर बहुत सारे हीरे छुपे हुए हैं, उनके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। तो साहित्य के अंश में आज निराला पर चर्चा करके हमने छायावादी युग के चारों स्तंभ यानी जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत, इन चारों ही साहित्यकारों की रचनाओं पर, उनके व्यक्तित्व पर, उनकी रचना शैली पर चर्चा की। इन सभी साहित्यकारों पर हुई चर्चा को आप हमारी वेबसाइट के हिंदी पेज पर कला और संस्कृति के विषय के अंतर्गत सुन सकते हैं।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।